الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में जैसे कि आप जानते हैं, हम मारिफुल कुरान जिल्द अव्वल से मुकदमा पढ़ रहे हैं, और मुकदमा जो है वो उलूमुल कुरान पर मुश्तमिल है, जो हज़रत मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फ़रजंद हज़रत हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम से लिखवाया। तो उसमें हम पेज नंबर 29 के ऊपर थे और पढ़ रहे थे कि कुरान करीम का तदरीजी नुज़ूल, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को दुनिया में नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है वो एक यकमुश्त एक साथ नहीं उतारा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके उतारा। तो उस पर हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जो उसकी तौजीहात वजूहात लिखी हैं वो चार हैं, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मी थे, एक ये वजह थी, और दूसरा ये है कि अगर दफ़अतन नाजिल हो जाता तो सारे अहकाम जो कुरान मजीद में थे वो एक साथ फ़र्ज हो जाते उम्मत के ऊपर। तो ये अल्लाह ताला की हिकमत के हकीमाना तदरीज के खिलाफ होता, जो शरीयत मुहम्मदी में मलहूज रही है। तो एक साथ जो है वो सारे अहकामात अगर नाजिल हो जाते तो उससे क्या होता। कोई कहे कि भाई हमारे ऊपर तो एक साथ नाजिल होते हैं, ठीक है, यानी जैसे ही जो है कोई इंसान मुसलमान होता है या जैसे ही कोई बच्चा जो है वो बालिग होता है तो सारे शरीयत के अहकामात उसके ऊपर एक साथ ही होते हैं ना। तो उस जमाने में अगर एक साथ हो जाते तो फिर कौन सी मुश्किल बात हो जाती, ठीक है ना। तो ये एक तालिबे इल्माना सवाल भी है, खासकर ये एतराजाना सवाल होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक तालिबे इल्माना तौर से भी एक जहन में सवाल आता है, ठीक है। तो इसका क्या जवाब दिया जा सकता है, अगर आप में से कोई अटेम्प्ट करे, कोशिश करे इसका जवाब देना, ठीक है, कि आज में और उस वक्त में क्या क्या फर्क है भाई। आज भी तो एकदम से सारे अहकाम नाजिल होते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता कि जी नमाज जो है ना वो मुसलमान होने के बाद अभी नमाज फर्ज हुई है और जो है ना वो अगर रमजान आ गया तो रोजे फर्ज नहीं हुए, ठीक है ना। अब रोजे जो है ना वो आप अगले साल रखिएगा, इस साल के रोजे आपके ऊपर फर्ज नहीं है, क्या ख्याल है, ऐसा होता है। या बच्चा जो है वो बालिग होता है तो अब उसके ऊपर क्या आहिस्ता आहिस्ता अहकाम फर्ज होते हैं, तो फिर क्या क्या फर्क है जी। ये आपसे पूछा है तो अब आप ही जवाब देंगे। आज बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसको पता चलना शुरू हो जाती हैं चीजें। ये तो आपने बच्चे के बारे में बता दिया ना, व्हाट अबाउट ए न्यू मुस्लिम, उसके बारे में फिर क्या है। दीन मुकम्मल हो गया है, बेशक दीन मुकम्मल हो गया है, लेकिन इंसान तो वैसा ही है ना। इंसान तो नहीं कि पहले नामुकम्मल था, अब जो है वो मुकम्मल हो गया 1400 साल गुजरने के बाद, ठीक है। बल्कि अगर देखा जाए, अगर इस्तेदादें देखी जाएं, राइट, अगर कैपेबिलिटी देखी जाए, अकली एतबार से भी देखी जाए और जो है वो फिजिकल एतबार से भी देखी जाए, तो उस जमाने में बहुत ज्यादा थी आज के मुकाबले में, राइट। हम तो ये सोचते हैं जब हम कभी घोड़ा हॉर्स राइडिंग वगैरह की तरफ जाते हैं ना, ठीक है, बच्चों को ले गए या खुद जो है वो ऐसे कभी देख लिया, ऐसी जहन में बात आ गई, तो हम सोचते हैं कि इस घोड़े के ऊपर हमसे जो है ना वो बैठ करके एक चक्कर लगाना जो है ना वो अजाब हो जाता है, ठीक है ना। मेरे जैसा शख्स जो है ना वो एक चक्कर लगाना उसके लिए अजाब हो जाता है। और वो लोग जो लोग थे ना वो घोड़े के ऊपर बैठते थे, घोड़े को जो है वो मैनूवर भी करते थे, जहां वो उनको चलाना होता था वो घोड़े को चलाते थे, और साथ साथ जो है ना वो इतनी भारी भरकम तलवार जो है वो भी उठा करके लड़ाई करते थे, राइट, और साथ साथ जो है वो शील्ड को भी जो है वो संभाल रहे होते थे, और जो है वो तीर कमान भी जो है वो चला रहे होते थे जब जरूरत पड़ती थी, और नेजाबाजी भी जो है कर रहे होते थे, और ये सारी चीजें जो है ना, ये आज के मेटल्स की बनी हुई नहीं होती थी, ये असल फौलाद की बनी हुई चीजें होती थी। ठीक है, असल फौलाद की बनी हुई चीजें होती थी, आयरन कोर। ठीक है, तो उनका यानी हम तो उनके नजदीक जो है ना, वो 40वां हिस्सा भी नहीं है उनका। ठीक है, लेकिन उनके ऊपर तदरीजन आ रही है अहकाम, और हमारे ऊपर जो है एकदम से सारी की सारी। तो क्या वजह है इसकी? क्योंकि पहले जो भी कोई सवाल होता था सहाबा को, अब और कोई जवाब दे, यही लिखे जा रहे हैं। उस वक्त शरीयत बदल रही थी, अब सारे अहकाम मुकम्मल हो गए हैं और उसकी तफासील भी सबको मालूम है। थोड़ा थोड़ा सा पहुंचे हैं वैसे, अब आप थोड़ा थोड़ा सा पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी काफी आगे जाने की जरूरत है इस जवाब के अंदर। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपने स्किम किया है जवाब को। ठीक है ना, वो क्या है, अब चले इन्होंने एक हिंट दे दिया, इस हिंट से बाकी लोग फायदा उठाए, अगर इनके जवाब में एक हिंट है उस तरफ, इशारा है उस तरफ। ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह, एक जवाब तो यहीं पर आ गया है। ठीक है, हमारे बेटे साहब ने जवाब दे दिया है। ठीक है ना, लेकिन आप लोगों से भी तो चाहिए ना, यानी ऑन साइट तो जवाब आ गया है, अब ऑनलाइन जवाब की कमी रह गई है। जी, दीन को कयामत तक बाकी रखना था, क्योंकि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये क्या बात हुई, मतलब इसका इससे क्या ताल्लुक है? इसका इससे क्या ताल्लुक?
क्या कहा था आपने, दिन?
जी, तो जो ऑन साइट जवाब आया है ना, वो क्या है, वो ये है कि उस वक्त दीन पूरी दुनिया में इंसानियत के लिए नया था, बिल्कुल नया था, यानी इंसानियत उससे नावाकिफ हो चुकी थी। बल्कि शरीयत जो है वो पुरानी जो शरीयतें अगर थी भी ना, मूसा अलैहि सलाम वाली शरीयत थी या इब्राहिम अलैहि सलाम वाली शरीयत थी, तो वो भी जो है ना, वो लोगों के जहनों से महव हो चुकी थी। राइट, वो लोगों के जहनों से महव हो चुकी थी, और बाकी था ही नहीं कुछ, दीन था ही नहीं। ठीक है ना, लम यकुन अल्लज़ीन कफरू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन मुनफक्कीन हत्ता तातियहुमुल बय्यिना रसूलुम मिन अल्लाह यतलू सुहफन मुतहरा। यानी ऐसा बुरा मामला हो चुका था कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में हमें बताते हैं कि ये लोग जो है ना, ये मानने वाले नहीं थे, ये मानने वाले नहीं थे। इन्होंने जो है ना, वो लम यकुन अल्लज़ीन कफरू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन, ये दोनों के दोनों जो कैटेगरीज थी, मक्का मुकरमा वाले और जो है वो मदीना मुनव्वरा के यहूद और ये सारे के सारे बनी इसराइल, ये मानने वाले लोग नहीं थे जब तक के बैना आई। तो भाई पूरी दुनिया इससे नावाकिफ हो चुकी थी, दीन बिल्कुल गरीब चीज के तौर पर आया था, बिल्कुल नई चीज के तौर पर आया था, कोई माहौल नहीं था, नो वन वॉज फेमिलियर विद इट। राइट, तो उस वक्त जो है ना, ये दीन का माहौल बनने की जरूरत थी, इसमें वक्त लग रहा था, लगना था इसके अंदर। अल्लाह ताला ने ये तदरीजन मामला बनाया है दुनिया के अंदर, माहौल बनने में दर्जा ब दर्जा माहौल बनता है, लेकिन माहौल बन चुका नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में, फिर बिलाखिर माहौल बन चुका जब दीन मुकम्मल हो गया, और उसके बाद सहाबा कराम की जिंदगी में वो फैल गया और वो चलता रहा, चलता रहा। आज भी वो मौजूद है, आज भी वो माहौल मौजूद है। फर्क सिर्फ ये है कि जब दारुल कुफर के अंदर जाते हैं, वहां पे कमाने के लिए और खाने के लिए और हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और यूरोप जाते हैं और फलानी जगह जाते हैं, राइट, तो वहां पर जो है ना, वो माहौल नहीं होता, वहां पर माहौल नहीं होता। अब वहां पे जाकर के दीन के इवन बुनियादी आमाल के ऊपर अमल दरामद होना, ये भी बहुत मुश्किल काम होता है। अब तो खैर वो भी बहुत आसान हो गया, अब तो वो मामला भी वहां पे खत्म हो गया, क्योंकि अब तो वो है ना, प्लूरलिज्म का दौर आ गया, प्लूरलिज्म है अब तो जो है वो अमेरिका के अंदर भी और यूरोप के अंदर भी। अभी हमारे भाई साहब जो है वो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने भेजा कि जी एक जो है ना वो नई ट्रेंड आ रहा है अमेरिका वगैरह के हॉस्पिटल्स के अंदर कि जी क्योर के अंदर जो जो हॉस्पिटल्स के अंदर क्योर की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है ना, तो उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी बड़ी अहम है। तो डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स को स्पिरिचुअलिटी को भी जो है ना वो अपने ट्रीटमेंट के अंदर इंक्लूड रखना चाहिए। और जब हमने उसको पढ़ा उसकी वेबसाइट के ऊपर जो उन्होंने तफसील लिखी हुई थी, तो वहां पर सिर्फ बाइबल का जिक्र नहीं था, सिर्फ जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट का जिक्र नहीं था, वहां पे कुरान मजीद का भी जिक्र था। अमेरिका के हॉस्पिटल की रिसर्च और उसकी जो वेबसाइट है कि हमें स्पिरिचुअलिटी को जो है वो अपने पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, उसके अंदर तीनों रिलीजन्स राइट, और यानी सब कुछ हर चीज ही चाहिए। क्रिश्चियन को जो है वो हम बाइबल प्रोवाइड करेंगे, उसको जो है वो हम तस्वीरें प्रोवाइड करेंगे जो उनकी क्रिश्चियन ट्रेडिशन के अंदर होती है, और मुसलमानों को हम प्रेयर बीड्स प्रोवाइड करेंगे, प्रेयर रग्स प्रोवाइड करेंगे, उनको कुरान मजीद प्रोवाइड करेंगे। और है तो अब तो वो मामला नहीं रहा माहौल वाला, लेकिन फिर भी अभी भी यूरोप के अंदर इतना आसान नहीं है। ठीक है, इसी वजह से वहां पर जाकर के रिहाइश इख्तियार करना ये शरअन नाजायज था, ये शरअन नाजायज है वहां पे जाकर के। ठीक है, कि दुनिया की कमाने की खातिर दारुल कुफर के अंदर जाकर के रहना, आप उठा के देख लीजिए, यही मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तकरीर तरमिजी को उठा के देख लीजिए, उसके अंदर ये चीज मौजूद है कि ये जायज नहीं है वहां पे जाकर रहना। क्यों जायज नहीं है भाई? इसलिए कि वहां पे आप दीन पे अमल कर नहीं सकेंगे, इवन फराइज के ऊपर आप अमल नहीं कर सकेंगे। अभी न्यूयॉर्क के बारे में हमारे एक साथी आए हुए थे इज्तमा में, उन्होंने बताया कि न्यूयॉर्क के अंदर भी एक लॉ आ गई है कि जी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती है ना, तो वहां पे औरत जो है वो अपना चेहरा कवर नहीं कर सकती। ठीक है, तो अब ये तो चक्कर चलते रहते हैं ना वहां पे, कभी फ्रांस के अंदर आ जाता है कि वहां पे जो है वो निकाब बैन हो गया, कभी हिजाब बैन हो जाता है, कभी कुछ बैन हो जाता है, कभी कुछ बैन हो जाता है। ठीक है, तो माहौल जो है ना वो लाजमी होता है, माहौल की जरूरत होती है इंसान को। हर इंसान जो है ना वो बिलाल रजी अल्लाह तआला जैसा नहीं बन सकता और खुबैब रजी अल्लाह तआला जैसा नहीं बन सकता। ठीक है ना, तो दीन जो है वो सिर्फ बिलाल और खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हुम के लिए तो नहीं आया ना, दीन तो आम इंसान के लिए आया ना। तो माहौल नहीं था उस वक्त, माहौल बनने के अंदर वक्त लगता है, और जहां पे माहौल नहीं होता ना, तो वहां से हिजरत करने का हुक्म है, वहां पे टिकने का हुक्म नहीं है, इजाजत नहीं है वहां पे, वहां से हिजरत करने का हुक्म है। और अपने बच्चों को बुरे माहौल में भेज करके उनसे तवक्को करना कि वो दीन के फराइज के ऊपर अमल करेंगे और अकायद की हिफाजत करेंगे, ये खाम ख्याली है, इसकी इजाजत नहीं है। अपने बच्चों को जो है ना वो समंदर में धक्का दो और फिर उनसे ये तवक्को करो कि वो गीले मत हों, है ना, समंदर में धक्का दो और फिर कहो कि गीले मत हो, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, दिस इज नॉट परमिसेबल, दिस इज नॉट परमिटेड। हमने बना लिया तो हमारी अपनी खराफात हैं, हमने अपनी जो है ना इश्तराहत बनाई हुई है, दीन का ऐसे ताल्लुक नहीं है कोई भी। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर अगर एक दफा नाजिल हो जाता तो तमाम अहकाम की पाबंदी फौरन लाजिम हो जाती, जबकि दुनिया के अंदर माहौल बिल्कुल भी नहीं था। देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना ख्याल फरमाया है माहौल का, इंसान की जो है ना वो इस्तेदाद का, उसकी जो कैपेबिलिटी है कि भाई वो बगैर माहौल के नहीं कर सकता चीजों के ऊपर, कितना लिहाज फरमाया, अपनी किताब अपना कलाम जो है वो इतफतन नाजिल नहीं फरमाया। और हमें जो है वो अपनी जाती औलाद के लिए इस बात की फिक्र नहीं होती कि हम उनके माहौल का ख्याल रखें, हम उनके माहौल की फिक्र करें, अपनी जाती औलाद के लिए हमें इस बात की फिक्र नहीं होती, दूसरों की क्या फिक्र करेंगे हम। ठीक है जी, कोई इख्तलाफ हो तो जरा बताइएगा, बात करेंगे फिर उसके ऊपर इंशाल्लाह। तीसरी बात, आदम सलाम को अपनी कौम की तरफ से हर रोज नई अजियतें बर्दाश्त करनी पड़ती थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का बार बार कुरान करीम लेकर के आना इन अजियतों के मुकाबले को आसान बना देता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकवियत कल्ब का सबब बनता था। ये भी, और चौथा पॉइंट ये भी कि लोगों के सवालात के जवाब और मुख्तलिफ वाकयात से मुतल है, इसके लिए जरा अंग्रेजी का लफ्ज बताइए, अंग्रेजी का लफ्ज लोगों के सवालात के जवाब में। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी तो सभी को आती है राइट, आखिर को इतनी मेहनत करी है उन लोगों ने, तो अंग्रेजी के बगैर तो गुजारा नहीं हो सकता। तो अब उस लफ्ज से जो है ना वो चूंकि बात ज्यादा समझ में आ जाएगी, इस वजह से आप तो पूछ रहे हैं। लोगों के सवालात के जवाब और मुख्तलिफ वाकयात से मुतल्लिक है, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको काउंसलिंग कहते हैं, काउंसलिंग भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे जहन में जो बात थी ना वो थी इंटरैक्टिव, इंटरैक्टिव, ठीक है ना, यानी टू वे कम्युनिकेशन। यहां से कोई चीज जा रही है, आगे से उसका जवाब आ रहा है, आगे से कोई चीज आ रही है, यहां से जो है वो सवाल जा रहा है, आगे से जवाब आ रहा है, ठीक है ना। इसको कहते हैं इंटरैक्शन, इंटरैक्टिव एजुकेशन। और एक होती है वन वे ट्रैफिक, चल रही है बस, सारी की सारी आपके ऊपर डाउनलोड हो गई, अब आप गो फिगर इट आउट, राइट, गो फिगर इट आउट। अब आप जो है ना वो खुद ही खुद ही फिगर करें कि आप इसके अंदर जो है ना खुद ही निकालें इसके अंदर से जो भी आपने अखज करना है, ठीक है ना। तो ये इंसानियत को किस किस्म की चीज की जरूरत पड़ती है, किस किस्म की नॉलेज की, क्या मोड ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, क्या मोड ऑफ एजुकेशन, क्योंकि कुरान मजीद क्या है, ये एजुकेशन के लिए हमें, राइट, हमें इक्विप करने के लिए, हाउ टू डील विद आवर लाइफ, हाउ टू डील विद द सर्कमस्टांसेस, हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, राइट। तो इसके लिए वन वे ट्रैफिक नहीं कि जी ऊपर से सारा का सारा एक साथ जो है वो डाउनलोड कर दिया, अब आप जाएं जा करके, है? लेकिन हमने इसको क्या समझा हुआ है, हमने इसको वन वे ट्रैफिक ही समझा हुआ है। हाँ भाई, पूरा का पूरा कलाम जी हमारे पास मौजूद है, अब हम जो है ना वो उसको खुद से पढ़ लेंगे, खुद से समझ लेंगे, खुद से फिगर आउट कर लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। नहीं, उस्ताद की क्यों जरूरत होती है, पहले भी बड़ी तफसील से बात हो चुकी है हमारी तफसीर क्लास के अंदर सूरह यूसुफ वाली, के खाली किताब जरिया नहीं है, किताब के साथ उस्ताद, किताब के साथ उस्ताद, क्यों उस्ताद की जरूरत होती है, इसी इंटरैक्टिव मोड ऑफ एजुकेशन के लिए, क्योंकि उस्ताद से आप सवाल पूछ सकते हैं, उस्ताद आपके स्पेसिफिक सिचुएशन के मुताबिक आपके सवाल का आपको जवाब दे सकता है, किताब नहीं दे सकती ये वाला काम, ये काम ये नहीं कर सकती किताब। क्या कर सकती है, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई आप किताब बना लीजिएगा, फिर इसके बाद थोड़े दिन के बाद कहेंगे हाँ कर सकती है, अब तो कर सकती है, अब तो उस्ताद की जरूरत खत्म हो गई, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद यही कोशिश हो रही है कि उस्ताद की पोजिशन खत्म हो जाए, ठीक है ना। कोशिश कर रहे हैं वो तो, हर चीज की कोशिश करते ही रहते हैं, बहुत पहले भी बहुत सारी कोशिशें करी थी, आगे भी करते रहेंगे, इनकी कोशिशों का क्या है। लेकिन अल्लाह ताला तो अपने दीन की हिफाजत फरमाने की जिम्मेदारी ले चुके हैं, तो अल्लाह ताला ने भी करना है आगे से, वह मकर वह मकर अल्लाह, ठीक है ना, ये करते रहे अपना मकर, अल्लाह ताला ने अपनी प्लानिंग करनी है। तो इंटरैक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है जी। तो ये है अल्लाह ताला का निजाम, और ये अल्लाह ताला की हिकमत, ठीक है ना, और अल्लाह ताला ने हमें बनाया, और हमें इसके हिसाब से जो है वो अल्लाह ताला फिर लेके चल रहे हैं। जो इस निजाम के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा वो उसका अपना प्रॉब्लम है, वो अपनी जो है वो टांगे कटवाएगा, वो अपने जो है वो नुकसान करेगा, अल्लाह का तो निजाम का नुकसान नहीं करेगा ना, वो अपना नुकसान करेगा, ठीक है जी। अब इसके बाद जो है वो शान नुजूल के टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। फरमाते हैं कि कुरान करीम की आयतें दो किस्म की हैं, एक तो वो आयतें हैं जो अल्लाह ताला ने अज खुद नाजिल फरमाई, कोई खास वाकया या किसी का कोई सवाल वगैरह उसके नुजूल का सबब नहीं बना। दूसरी आयत ऐसी हैं कि जिनका नुजूल किसी खास वाकये की वजह से या किसी सवाल के जवाब में हुआ, जिसे इन आयतों का पस मंजर कहना चाहिए। ये पस मंजर मुफस्सरीन की इस्तेलाह में सबब नुजूल या शान नुजूल कहलाता है, ठीक है। मसलन सूरह बकरा की तो आयत यहाँ पे लिखी है ना, वरना हम तो अभी ये क्लास शुरू होने से पहले हम तो पूरी की पूरी सूरह यूसुफ जो पढ़ के अभी मुकम्मल अल्लाह की तौफीक से हमने करी है, तो वो सूरह यूसुफ पूरी की पूरी जो है वो सवाल के जवाब में नाजिल हुई है, ठीक है ना। और इसी तरह से बेशुमार और बहुत सारी ऐसे मुकाम है कुरान मजीद के अंदर, तो उसमें से एक मिसाल हजरत ने यहाँ पे लिखी है कि सूरह बकरा की आयत नंबर 221 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि शैतानिर रजीम, वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना वला वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलो अअजबतकुम, के मुशरिक औरतों से निकाह ना करो जब तक कि वो ईमान ना ले आए, और बिलाशुबा एक मुमिन कनीज एक मुशरिका से बेहतर है, ख्वाह मुशरिका तुम्हें पसंद हो, है ना। लो अजबत तुम, चाहे वो कितनी ही तुम्हें भाती हो, चाहे कितनी ही तुम्हें अमेज करती हो, इस तरह से भी इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, अमेज करती हो, अजबत तुम, तुम्हें अजीब यानी अजीब व गरीब कैफियत में मुबतला कर देती हो, तुम्हें ऐसी हो वो औरत, फिर भी एक मोमिना जो है ना वो उससे बेहतर है, ठीक है ना, ईमान वाली। और ईमान वाली जब कुरान मजीद फरमाते हैं ईमान वाली, तो फिर हमारी तरह की ईमान वाली नहीं, जिसका कि ईमान हो अल्लाह के ऊपर, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, कुरान मजीद के ऊपर, आखिरत के ऊपर, ठीक है। तो बहरहाल इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारी तरह की हो तो वो उसको छोड़ करके जो है वो काफिरा से निकाह कर लेना, ये भी हरकत इसका मतलब नहीं है। ये जो आयत नाजिल हुई, ये एक खास वाकये में नाजिल हुई थी। जमाने जाहिलियत में हजरत मुरसिद बिन अबी मुरसिद गनवी रजी अल्लाह ताला अन के उन्नाप, या नाप जो भी इसका नाम था, उन्नाप नामी एक औरत से ताल्लुकात थे। इस्लाम लाने के बाद ये मदीना तैयबा चले आए और वो औरत मक्का मुकरमा में रह गई। एक मरतबा हजरत मुरसिद रजी अल्लाह ताला अन किसी काम से मक्का मुकरमा तशरीफ ले गए तो उन्नाप ने उन्हें गुनाह की दावत दी। हजरत मुरसिद रजी अल्लाह ताला अन्हों ने साफ इनकार करके फरमाया कि इस्लाम मेरे और तुम्हारे दरमियान हायल हो चुका है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत के बाद तुमसे निकाह कर सकता हूँ। ठीक है, ये फिना लोग थे ना, इन्होंने अपने आप को फिना कर दिया था। अपनी ख्वाहिशात जो कि शरीयत के खिलाफ होती थी वो कोई हैसियत अब इनके सामने नहीं रखती थी। नबी अलैहिस्सलाम शारे अलैहिस्सलाम थे तो उनसे ही पूछना था कि शरीयत में मुझे इसकी इजाजत है कि नहीं इजाजत है। तो ये तय हो गया। मदीना तैयबा तशरीफ लाकर हजरत मुरसिद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह की इजाजत चाही और अपनी पसंदीदगी का इजहार किया कि हाँ वो मुझे पसंद थी भाई, और अभी भी जो है वो ऐसा नहीं है कि वो नापसंद है मुझे, लेकिन आपकी इजाजत चाहिए। इस पर ये आयत नाजिल हुई और इसने मुशरिक औरतों से निकाह की ममानियत कर दी। असबाब उन्नुज़ूल किताब है वाहिदीन अब्दुल्लाह की। तो ये वाकया मस्कूरा 12 आयत का शान नुजूल या सबब नुजूल है। कुरान करीम की तफसीर में शान नुजूल नहायत अहमियत का हामिल है। बहुत सी आयतों का मफहूम उस वक्त तक सही तौर से समझ में नहीं आ सकता जब तक उनका शान नुजूल मालूम ना। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में वो आयत नाजिल हुई थी, तो उससे जो है ना वो फिर पिक्चर जो है वो पूरी होती है और फिर सही समझ में आता है कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या उसके। अच्छा, अगला टॉपिक है बड़ा अहम और बड़ी मोटी हेडलाइन हजरत ने आप उसकी लगाई है, कुरान करीम के 7 हरूफ और किरात, सब आकरात जिसको आम कहा जाता है। तो उसमें फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम की तिलावत में आसानी पैदा करने के लिए उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, अला साहिबिहिम सलाम, यानी ये उम्मत के लिए है, ठीक है, कि उनके ऊपर नबी के तो को एक सहूलत ये अता फरमाई है कि इसके अल्फाज को मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ने की इजाजत दी है, क्योंकि बाज औकात किसी शख्स से कोई लफ्ज एक तरीके से नहीं पढ़ा जाता तो उसे दूसरे तरीके से पढ़ सकता है। सही मुस्लिम की एक हदीस में है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बनू गफार के तालाब के पास तशरीफ फरमा थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए और उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को हुक्म दें कि वो कुरान को एक ही हर्फ पर पढ़े, यानी एक ही अंदाज से पढ़े, एक ही हर्फ पर पढ़े, इसको अरबी में कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला से उसकी माफी और मगफिरत तलब करता हूँ, यानी बड़ी आजिज़ी के साथ जो है ना वो एक रिक्वेस्ट पेश कर रहे हैं, पहले माफी मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, माफी तलब करता हूँ, मेरी उम्मत में इसकी ताकत नहीं है। ठीक है, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कुरान करीम को 2 हरफों पर पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं अल्लाह ताला से माफी और मगफरत मांगता हूँ, मेरी उम्मत में इसकी भी ताकत नहीं। फिर वो तीसरी बार आए और फरमाया कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कुरान करीम को 3 हरफों पर पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि मैं अल्लाह ताला से माफी और मगफिरत चाहता हूँ, मेरी उम्मत में इसकी भी ताकत नहीं है। फिर वो चौथी बार आए और फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कुरान मजीद को 7 हरूफ पर पढ़े, बस वो इनमें से जिस हर्फ पर पढ़ेंगे उनकी किराअत दुरुस्त होगी। ठीक है, 7 हरफों की इजाजत मिल गई। ठीक है, अब सुभान अल्लाह, इस वाकये की एक और वाकये के साथ कितनी ज्यादा मुशाबहत है, कोई जल्दी से जरा बता दे आप में से एक दूसरे वाकये के साथ। जी सुभान अल्लाह, ठीक है ना, मेराज में नमाज की जो वाकया है, ठीक है ना, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर 50 नमाजें फर्ज हुई, आप सजा नीचे आ रहे हैं। अच्छा, उस वक्त तो नबी अलैहिस्सलाम जो है ना वो माशाल्लाह, जिसको हम मतलब अदब के साथ, और अल्लाह ताला अगर गलती कोताही बेअदबी है तो अल्लाह ताला माफी माफ अता फरमाए, माफी अता फरमाए, कि नबी अलैहिस्सलाम अपने महबूब हकीकी से मिल करके आ रहे थे। तो नबी अलैहिस्सलाम तो माशाल्लाह जिसको कहते हैं ना जोबन पे थे, जोबन की हालत में थे। यानी क्या क्या आप सस्म की कैफियत होंगी नबी अलैहिस्सलाम, तो जो है ना बस यानी फ्लाइंग हाई जिसको कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन नीचे आए तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का बंदोबस्त फरमाया हुआ था, ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम नीचे से जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम को याद दिलाना शुरू किया, अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी उम्मत से 2 नहीं पड़ी गई, आपकी उम्मत से 50 कैसे पड़ी जाएंगी, आप जाइए तकफीफ करवा के आइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना वो इनकार नहीं किया, ये नहीं कि नहीं मैं तो बस जो है ना बस मैं तो इस वक्त जो है ना अल्लाह ताला की मोहब्बत में डूबा हुआ हूँ उस वक्त, और मैंने नहीं आपकी बात मानी। नहीं, उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम याद दिलाने से उम्मत की जो हालत है आप को याद आ गई, आप ने इनकार नहीं फरमाया, वापस चले गए। और फिर ये सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा, 50 से लेकर के नीचे 5 के ऊपर आकर के खत्म, ठीक है। तो ये वाकया भी बड़ा उससे जो है मुशाबत रखता है। लेकिन इसमें भी वही बात कि भाई अल्लाह ताला को तो सब कुछ मालूम है, ठीक है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी जो है ना फिर यानी अल्लाह ताला को फिर खाली यही बात को थोड़ी मालूम कि 5 नमाजें मैंने फर्ज करनी है, ठीक है ना, या ये कि मैंने जो है वो 7 की रातें जो है वो उनकी इजाजत देनी। अल्लाह ताला को सिर्फ यही नहीं मालूम, अल्लाह ताला को तो सब कुछ ही मालूम है। लेकिन अल्लाह ताला की पसंद है, अल्लाह ताला की चाहत है, कुछ चीजों में अल्लाह ताला जो है ना वो तदरीजन फैसला फरमाते हैं, ठीक है, कि लेट्स सेटल ऑन समथिंग। लेकिन शुरू में जो है ना वो नहीं, बल्कि आहिस्ता 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 आहिस्ता, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला की ये भी तो पसंद है ना, जहां नबी अलैहिस्सलाम की पसंद थी कि उम्मत के लिए खैर ख्वाही हो, जहां मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात पसंद थी कि मैं अल्लाह का दीदार तो नहीं कर सका, अगरचे कि मैंने तमन्ना करी थी लेकिन मैं नहीं दीदार कर सका, लेकिन मैं उसका तो दीदार करता रहूं ना जो के दीदार करके आया है। ये भी हमारे मशायख ने एक मोहब्बत वाली बात फरमाई कि मूसा अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम का दीदार करना चाहते थे बार बार, क्योंकि वो अल्लाह का दीदार करके आ रहे थे, तो इस वजह से ना उन्होंने वापस भेजना शुरू किया। ये एक यानी महबूबाना तशरीह है, खाली इसकी तौजीह है इसकी। तो उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत भी तो अल्लाह की भी तो पसंदें होती है ना, है अल्लाह की भी तो चाहते होती हैं कि मैं भी अपने महबूब की ज्यारतें करूं, राइट, करीब बुला करके बार बार देखूं, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला भी तो ये बातें चाहते हैं ना। उसी तरीके से जहां मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से जो है वो एक बात करने की बजाय 10 बातें करना चाहते हैं, अल्लाह ताला ने तो खाली ये पूछा था ना, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, कि आपके हाथ में क्या है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो अल्लाह ताला से चाहा कि मैं बातें करता रहूं, तो उन्होंने जो है ना वो खूब लंबी चौड़ी जो है वो इसकी यानी आपको पता ही है उसकी तशरीह बयान करी कि मैं ये मेरा असा है, मैं इसे टेक भी लगाता हूँ, मैं इसे जो है वो पत्ते भी झाड़ता हूँ, और ये मेरे बड़े फायदे की चीज है, ठीक है। तो भाई खाली मूसा अलैहिस्सलाम की ये चाहत की थोड़ी थी कि अल्लाह ताला के साथ बात करें, अल्लाह ताला की भी तो चाहत थी ना कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करें, राइट। अल्लाह की चाहत के बगैर कुछ हो सकता है? तो उसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की चाहत कि अल्लाह को देखें, अल्लाह की भी तो चाहत है ना कि मेरे महबूब जो है वो बार बार मेरे मेरे करीब आए, मेरे करीब आए, ठीक है। तो इसी तरीके से इस मौके के ऊपर भी अल्लाह ताला की तो यकीनन चाहत होगी, इसके बारे में हमें किसी यानी नकली दलील की जरूरत भी नहीं है, तो बड़ी सादा सी बात है, अल्लाह ताला की चाहत तो है ना, उसकी चाहत के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो बहरहाल, तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये कि नबी अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब के साथ तमीज के साथ, राइट, अपना अपना जो यानी अर्जी थी ना, अपनी जो दरख्वास्त थी, अपनी जो एप्लीकेशन थी, वो भी पेश कर दी, ठीक है ना। तलब थी दीद की मेराज का बहाना था, ये उन्होंने माशाल्लाह शायराना अंदाज में भी बता दिया, तलब थी दीद की मेराज का बहाना था, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम को ऑल द वे मक्का मुकरमा से बुलाया ही क्यों था, अपने महबूब को करीब बुला के देखना, वरना अल्लाह ताला तो दूर से भी देख रहे थे, लेकिन दूर से देखना अलग होता है, करीब से देखना अलग होता है। बहरहाल, तो अब नबी अलैहिस्सलाम ने भी ये नहीं कहा कि भाई अल्लाह ताला तो सब कुछ जानते हैं, पता था नबी अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं, पता था नबी अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला जो है वो का फैसला जो होता है वो हमारे हक में ही सही होता है। लेकिन तमीज के साथ, अदब के साथ उन्होंने जो है वो अपनी अर्जी पेश कर दी, अर्जी पेश कर दी, ठीक है ना। ये हम भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई हम मेरी उम्मत के अंदर इसकी ताकत नहीं है, आप जो है वो एक की बजाय जो है ना वो उसको यानी रिलैक्स कर दें, आसान कर दें, ठीक है। तो ये अदब की बातें होती हैं, लेकिन ऐसी बातें जो है वो अदब के साथ ही अच्छी लगती हैं। ऐसा ना हो कि जी नहीं आपको क्या पता मुझे ज्यादा पता है, नहीं, आप क्या जाने, मैं ज्यादा इल्म वाला हूं तो मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं, तमीज अदब के साथ माफी मांगी और जो है वो आजी और इनकिसारी के साथ जो है ना वो अपनी एप्लीकेशन आगे बड़े के सामने पेश कर दी। इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं, ये हम अपने अपने हबीब अलैहिस्सलाम की सुन्नत से ये बातें सीखते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे हजरत अपने वाकयात बयान करते हैं कि हमारे हजरत के जो हजरत थे मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक बात फरमाई तो हजरत को समझ में ही नहीं आई कि ये क्या कि क्या क्या कह रहे हैं इस तरह की बात, कि ला ईमान अली मन ला बैत लहू, राइट, कि जिसका घर नहीं होता अपना जाती तो उसका ईमान नहीं होता। लेकिन इस सवाल को किया कैसे कि हजरत मैं असल में बहुत, आपको पता है मैं तो बच्चा हूं, मैं तो बहुत ही नातजुर्बेकार हूं, मेरी अकल अभी पूरी नहीं है, मुझे बात समझ में नहीं आती, तो आप समझा दीजिए जो जो आपने फरमाया इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो सवाल जहन में था, इश्काल जहन में था, बात समझ में नहीं आ रही थी, क्या मतलब बात समझ में नहीं आ रही थी, क्या उर्दू जुबान नहीं आती हजरत को, राइट, क्या हजरत को जो है वो अल्फाज के मायने नहीं पता थे जो उनके हजरत फरमा रहे थे, पता थे, बात समझ में नहीं आ रही थी का मतलब क्या है, असल में हजम नहीं हो रही थी बात, हजम नहीं हो रही थी अपने शेख की। ठीक है ना, तो ये नहीं होता कि शेख ने जो बात कर दी फौरन से हजम हो जाएगी, हर चीज ही हजम हो जाएगी, नहीं, बहुत सारी बातें होती हैं हजम नहीं होती, यानी आप उससे एग्री नहीं कर रहे होते हैं, राइट, आप उससे एग्री नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन तरीका होता है पूछने का। ठीक है, तो ये तरीका जो होता है वो बड़ों से सीखने के लिए हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल क्या लिखा है उन्होंने, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए भी दूर और करीब होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो हमारा अकीदा, अहले सुन्ना वल जमात का अकीदा क्या है कि अल्लाह ताला अपने वजूद के साथ हर जगह मौजूद नहीं है, अपने इल्म से हर जगह मौजूद है। ठीक है ना, ये नहीं है कि अल्लाह ताला हुलूल किए हुए हैं यहाँ पे, जो गैस मॉलिक्यूल्स मेरे गिर्द हैं एटमोसफेयर के अंदर, नाउज बिल्ला, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो उन गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर हुलूल किए हुए हैं, ये तो नहीं है ना हमारा अकीदा। ठीक है ना, या अल्लाह ताला जो है वो मेरे सामने जो है नाउज बिल्ला ये लैपटॉप रखा हुआ है तो अल्लाह ताला लैपटॉप के अंदर हुलूल किए हुए हैं, तो इस वजह से अल्लाह ताला, नहीं, अल्लाह ताला अर्श पर है। ठीक है ना, अर्श पर है अल्लाह ताला, ये है ना अकीदा हमारा। ठीक है, तो अर्श और हमारे यहाँ फासले का बाकायदा जो है वो एक यानी जेन्युइन तरीक वो है। ठीक है, तो इल्म के साथ होना ये एक अलग चीज है और फिजिकली मौजूद होना ये अलग चीज है। अब अल्लाह ताला की जात कैसी है ये हमें पता ही नहीं कुछ, ये हमारे छोटी सी अकल के अंदर ही बात समा ही नहीं सकती, तो वो एक अलग मसला है कि भाई हमें तो पता ही नहीं कि अल्लाह ताला का वजूद है कैसा, कैसा नजर आता है, क्या है क्या है, लेकिन इतना तो पता है ना, वह कान अर्शु अल, नहीं क्या है, जो भी कुरान मजीद के अंदर आयात हैं इसकी के इस्तवा अल अर्श वगैरह। खैर, तो सात हरूफ से मुराद सात नौइयतें हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बात जहन में चूंकि आई हुई है तो अगली क्लास तक पता नहीं, जब तक हम तफसील पढ़ेंगे तो वो शायद कहीं निकल ना जाए, तो इस वजह से अभी आपके सामने रख देते हैं कि आगे ना हमने पढ़नी है कि ये सात का मतलब एग्जैक्टली सेवन नहीं है, एग्जैक्टली सबा नहीं है, एग्जैक्टली सात नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि आगे हम तफसील पढ़ेंगे ये सात से ज्यादा बहुत सारी हैं। ठीक है ना, बहुत सारी कराते हैं, तो फिर सात का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, इस पे अल्लाह ताला अजर अता फरमाए। हमारे एक बुजुर्ग जिनका अब इंतकाल हो चुका, हजरत मौलाना सईद अहमद पालनपुरी रहमतुल्ला अलैह, वो आया करते थे, हम पहले शिकागो में रहते थे, तो वो हमारी मस्जिद में भी आकर के माशाल्लाह 10-10 दिन के लिए कयाम फरमाया करते थे, रमजान का पहला अशरा जो है वो शिकागो में गुजारा करते थे, तो अब उनकी रोजाना जो है ना वो मजालिस होती थी, अल्लाह ताला जब भी हमें मौका देता था हम उस मजालिस के अंदर बैठते थे, तो उसमें इस आजिज ने उनसे सुना था कि अरबी जुबान के अंदर जो ये लफ्ज सात इस्तेमाल होता है या 70 इस्तेमाल होता है या 700 इस्तेमाल होता है ना, इसका मतलब एग्जैक्टली इतनी इतने तादाद नहीं होती, बल्कि इसका मतलब जो है ना, जैसे उर्दू जुबान के अंदर हम दर्जनों का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, या हम कई का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बहतेरे का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, असल में इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो सात का मतलब जो है वो यानी एक एक थोड़ी सी महदूद अमाउंट में कई, अब वो सात का मतलब 20 भी हो सकता है, सात का मतलब 15 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। ठीक है ना, और अगर वो ज्यादा बड़ी तादाद होगी तो 70 फरमा देंगे, 70 गुना सवाब मिलता है। अब 70 गुना का मतलब ये नहीं कि 71 नहीं मिल सकता, 70 ही मिलेगा, 71 नहीं मिलेगा, नहीं, बल्कि 70 का मतलब ये है कि इतने प्रोपोर्शन में जो है ना वो बड़ा, ठीक है। और इसी तरीके से 700 जो है वो और भी ज्यादा, बहुत बड़ी प्रोपोर्शन में बहुत सारा अमाउंट, ठीक है। बिकॉज एट दैट टाइम 7 वॉज अंडरस्टूड एज ए बिग नंबर। चले माशाल्लाह, आपने कहीं पढ़ा है? हाँ, मतलब ये जो यूनिट्स है ना हमारे यहाँ, ये तो आप लोग ने मैथ के अंदर पढ़ा ही होगा, हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा था अपने जमाने में, आप तो और ज्यादा डिटेल्स पढ़ाते हैं कि ये यूनिट्स जो है ना, ये 1 to 10 वाला, ये तो एक खाली एक नंबरिंग सिस्टम है ना। तो दूसरे नंबरिंग सिस्टम्स के अंदर 1 to 7 फॉर एग्जाम्पल, और 7 के बाद जो है ना फिर वो डबल डिजिट के अंदर चला जाएगा। तो ये डिफरेंट नंबरिंग सिस्टम जो है वो दुनिया के अंदर आज भी मौजूद है, पहले तो और भी ज्यादा इस तरह के होते थे। तो बहरहाल हो सकता है इसी तरह से डिफरेंट नंबरिंग सिस्टम का के बुनियाद पर जो है ना ये 7, फिर 70, फिर 700 इस तरह से बनता होगा। खैर, तो फरमाते हैं कि 7 हरूफ से मुराद क्या है? 7 नौइयतें। चुनाचे एक और हदीस में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इन हादल कुरआना उन्जिला अला सबअति उहरुफिन अहरुफिन फकरउ मा तयस्सरा मिन। सही बुखारी की ये रिवायत है कि ये कुरान मजीद 7 हरूफ पर नाजिल किया गया है, बस उनमें से जो तुम्हारे लिए आसान हो इस तरीके से पढ़ लो। मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह के कौल का क्या मतलब था? जी चलो ठीक है, अब हमने उसका जिक्र कर दिया, तो आपने मतलब पूछा तो आपका हक बनता है। तो हजरत जो फरमाया करते थे ना, ला ईमाना लिमन ला बैता लहू, कि उसका ईमान नहीं जिसका के घर नहीं। तो हजरत ने जब पूछा ना अपने शेख साहब से, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरा मतलब कहने का ये होता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिसका जाती घर नहीं होता ना, वो किराए के घर के अंदर ही गुजारा कर रहा होता है। तो अगर उस बंदे का इंतकाल हो जाए तो बेवा जो है ना वो उस किराए के घर के अंदर रह रही होती है। तो जो मालिक मकान है उसको अगर किराया ना मिला, अब इसके पास जो है वो आमदनी का सिलसिला खत्म हो गया, अब जो है ना ये किराया कहाँ से ला करके देगी? तो मालिक मकान ने इसको घर से बाहर निकाल दिया, और इसके ऊपर जो इतनी बड़ी मुसीबत आजमाइश पड़ी ना, तो इसने ऐसे कलिमात कहने शुरू कर दिए जिससे कि ईमान की नफी हो जाती है, राइट। लेकिन यार इस तरह की कलिमात जैसे अल्लाह ताला ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अल्लाह ताला ऐसा क्यों करता है, या क्या अल्लाह ताला है भी कि नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ठीक है ना। कमजोर ईमान वाले लोग होते हैं वो फिर इन मुश्किल हालात के अंदर ऐसी बातें करना शुरू करते हैं। तो इस वजह से हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, और हमारे हजरत भी फिर यही फरमाया करते हैं कि जो जाती घर का इंतजाम करना है ना, ये जरूरियात में शामिल है, ये ख्वाहिशात में शामिल नहीं है, ये जरूरियात में शामिल, ये ईमान की हिफाजत के लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो दूसरी चीजों में अपना पैसा खर्च करने की बजाय अगर अल्लाह ताला ने दिया है, पहले घर का इंतजाम, जाती घर का इंतजाम, ठीक है, फिर उसके बाद उस जो बाकी बचे उसके बाद फिर दूसरे काम करना। जी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद में 7 हरूफ से क्या मुराद है? इस बारे में अहले इल्म के मुख्तलिफ अकवाल हैं, लेकिन मुहक्किक उलमा के नजदीक इसमें राजह मतलब ये है कि कुरान करीम की जो किरातें अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई हैं उनमें बाहिमी फर्क व इख्तलाफ कुल 7 नौइयतों पर मुश्तमिल है, और वो 7 नौइयतें ये हैं, ठीक है, यानी कि इख्तलाफ की ये वजूहात बनती हैं, तो उनमें से या ये शक्लें बनती हैं। तो पहली है अस्मा का इख्तलाफ, ठीक है, यानी नाउन ही के अंदर जो है ना डिफरेंट टेंसेज इस्तेमाल हुए हैं, जिसको अंग्रेजी में टेंसेज कहते हैं, सीगा कहते हैं अरबी में, जिसमें इफराद तस्निया जमा, यानी सिंगुलर ड्यूअल एंड प्लूरल, तो इनका फर्क है, और तज़किर व तानीस मैस्कुलिन और फेमिनिन का, तो दोनों का इख्तलाफ दाखिल है ना, यानी जेंडर डिफरेंसेस भी हो सकते हैं किसी नाउन के अंदर, किसी किरात में कोई है, किसी किरात में कुछ है, और प्लूरालिटी वाला डिफरेंस भी हो सकता है। मसलन एक किरात में तम्मत कलिमत व रब्बिक, और दूसरी किरात में यही चीज है तम्मत कलिमात व रब्बिक, ठीक है। अब कलिमा जो है ये मुफरद यानी सिंगुलर टेंस है, और कलिमात जो है ये प्लूरल टेंस है, जमा का सीधा है। तो ये होगा अस्मा का इख्तलाफ। फिर अफआल का इख्तलाफ, यानी वर्ब्स जिनको कहते हैं, कि किसी किरात में सीगा माजी है, किसी में मुबारे है, और किसी में अमर है, ठीक है, यानी कमांड टेंस है। मसलन एक किरात में है रब्बना बाइद बैना असफारिना, और दूसरी में है रब्बना बाइद बैना अस्वारेना। हाँ, तो बाइद जो है ये तो अमर का सीगा है ना, और बाइद ये माजी का सीगा बनेगा अगर इस फेल की जो है वो तहकीक है किसी के पास, तो बाइद जो है वो माजी का सीगा बनेगा, बाइद ये तो अमर का सीगा बनेगा। तो ये फे अफाल का इख्तलाफ हो, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी वजूह है आराब का इख्तलाफ, यानी आराब किस वज के साथ, किस किस जिहत के साथ या किस एंगल के साथ उसके ऊपर जो जो वॉवल्स आते हैं, तो उनमें देखते हैं कि जिसमें आराब या जेर जबर पेश, उर्दू में हम जेर जबर पेश कह दिया करते हैं, वरना आराब जो है वो रफा नसब जर जजम ये आराब होते हैं। मसलन ला युदार कातिबुन की जगह ला युदारू कातिबुन, ठीक है। तो ये हालत है नसब में युदार हो गई और हालत है रफा के अंदर युदार हो गया। या जुल अरशिल मजीद की जगह जुल जुल अरशिल मजीदू की जगह, हाँ जुल अरशिल मजीदी, ठीक है। तो ये तो क्लियर जो है वो यानी मौसूफ सिफत हो गया, ये तो अल अर्श अल मजीद ये मौसूफ सिफत हो गया, और वहां पर जो है वो जुल अर्श अर्श वाला अल मजीदू जो के अल मजीद है, ठीक है। तो ये भी फर्क है वजूह आराब का इख्तलाफ, इसको इसको कहेंगे अल्फाज की कमी बेशी का इख्तलाफ, कि एक करात में कोई लफ्ज कम और दूसरी में ज्यादा हो। मसलन एक करात में तजरी में तहतिहल अनहारू है और दूसरी में तजरी तहत तहतहल अनहारू है, ठीक है। यानी मिन का लफ्ज ही नहीं है एक करात के अंदर दूसरी करात के अंदर है, ठीक है। तो अल्फाज की कमी बेशी का इख्तलाफ और तकदीम और तखीर का इख्तलाफ, कोई चीज पहले मुकद्दम है और कोई चीज मुअख्खर है उसको ताखीर कहते हैं, कि एक किरात में कोई लफ्ज मुकद्दम है और दूसरी में मुअख्खर है। मसलन वजाअत सकरतुल मौती बिल हक, और दूसरी में है वजाअत सकरतुल हक बिल मौत, मौत का जो सकरात होती है सकरातुल मौत जिसको कहते हैं, तो इसका आना जो है ना वो हक है, या सकरतुल हक बिल मौत, मौत के साथ सकरात हक सकरात, ठीक है, मौत के साथ। बहरहाल ये तो सिर्फ लफ्जी तर्जुमा ऐसा कर दिया, कोई पहले से किसी प्रिपरेशन करी भी नहीं थी। बहरहाल ये आप बिल्कुल साफ जाहिर है आपके सामने कि ये इख्तलाफात हैं। फिर बदलियत का इख्तलाफ, एक करात में एक लफ्ज है दूसरी करात में उसकी जगह कोई दूसरा लफ्ज, यानी पूरा लफ्ज ही बदल तब्दील है। मसलन नुन शिजुहा और नन शुरुहा दोनों अलग अलग लफ्ज है, नीस फतबैनु और फतसब्बतु, ठीक है। उसकी जो है वो तुम तहकीक कर लिया करो, उसको खोल लिया करो, उसको क्लियरफाई कर लिया करो, और फतसब्बतु उसको साबित कर दिया करो, ठीक है। और तलहिन और तलइन बिल्कुल अलग अलग अल्फाज हैं, तो ये बदलियत का इख्तलाफ है। और लहजों का इख्तलाफ आखिरी में, जो कि आसान हमारे समझने के लिए सिर्फ लहजों का ही इख्तलाफ जो होता है ना, वो उसी से बात हम समझाते हैं कि भाई डायलैक्ट्स का फर्क। जैसे कि पंजाबी जुबान जो है वो आपके पता है कि लाहौर का डायलेक्ट अलग होता है, पिंडी वालों का डायलेक्ट अलग होता है, और जो है वो फैसलाबाद वालों का डायलेक्ट अलग होता है, उसी तरह उर्दू जो है वो लखनऊ वालों का अलग, और जो है वो दिल्ली वालों का अलग, और हैदराबाद वालों का अलग, और बिहार वालों का अलग। तो ये बड़े सादा इंसान के लिए समझने के लिए यही सादा मिसाल है। तो अरबी में क्या होगा, क्या होगा तफखीम तरकीक इमाला मद कसर हमज इजहार और इदगाम वगैरह के इख्तलाफात दाखिल हैं। अब ये जो तजवीद पढ़ने वाले लोग हैं जिन्होंने पढ़ी भी है पढ़ रहे, तो उनको ये टर्म्स याद होंगी, अभी मेरे तो ज्यादातर याद भी नहीं है। यानी इसमें लफ्ज तो नहीं बदलता लेकिन इसके पढ़ने का तरीका बदल जाता है। मसलन मूसा को एक किरात में मूसई की तरह पढ़ा जाता है, ठीक है। मुझे तो बस एक ही याद रहता है जो हम अपने माशाल्लाह हाफिज साहब से भी सुनते रहते हैं, हाफिज अहसान साहब होंगे अगर क्लास में, तो वह वल्लैली इज़ा वही वल्लैली इज़ा सजई, ठीक है। तो ये एक अलग किरात है। बहरहाल इख्तलाफ किरात की इन सात नौईयतों के तहत बहुत सी किरातें नाजिल हुई थी। तो साथ एक एक समझ लें, एक अम्ब्रेला टर्म के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनके तहत जो है ना फिर इन सात से कई ज्यादा किरातें, और इनके बाहमी फर्क से मानी में कोई काबिले जिक्र फर्क नहीं होता था, सिर्फ तिलावत की सहूलत के लिए इनकी इजाजत दी गई थी। अब अरबों में जैसे अलग अलग ट्राइब्स की, अलग अलग कबीलों की और इलाकों की जो है ना, वो अलग अलग किरातें थी। जैसे हम नहफ पढ़ते हैं तो उसमें सबने ही पढ़ा होगा नहफ के अंदर कि जी कबीला तय की किरात के अंदर जो है ना, वो इस लफ्ज का ये मतलब होता है। ठीक है, तो दैट्स जस्ट वन एग्जाम्पल। देर इज ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन, इन्होंने लिखा जैद भाई ने, कि देर इज ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन इजिप्शियन डायलैक्ट एंड सऊदी डायलैक्ट इन अरबिक। ठीक है, हाँ इजिप्शियन डायलैक्ट और सऊदी में भी फर्क है, और जो है वो क्या कहते हैं शाम का जो डायलैक्ट होता है उसमें भी बहुत फर्क है। ये आप देख लें बहुत सारे ही है, यानी मिडल ईस्ट कुवैत का जो है वो काफी डिफरेंट अरबी होती है, और जॉर्डन की या फिर फलस्तीन की एक अरबी अलग होता है, शाम का अलग होता है, इजिप्ट का अलग होता है। फिर आप और चले जाए ना उधर मोरक्को और मोरितानिया वगैरह के मगरिब के जो इलाके कहलाते हैं उनका अलग डायलेक्ट होता है। तो ये डायलेक्ट तो आजकल भी बातचीत करने के अंदर फर्क है। और एक होता है बंगाली डायलेक्ट, किदा किदा, ठीक है ना, तो वो एक अलग डायलेक्ट जो है वो अभी रिसेंटली बना है, जिसको हम तो बंगाली डायलेक्ट कहते हैं, क्योंकि वो बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले अक्सर जो हमारे दोस्त होते हैं तो वो उस अंदाज से बात करते हैं। अब सब अब जो है वो अरबों ने भी उसी अंदाज से बात करनी शुरू कर दी है। अच्छा, खवातीन की जब कभी आवाज कानों में पड़ जाती है ना, जैसे कहीं मार्केट में या कहीं भी, तो आपने शायद नोट किया हो कि मैंने तो बहुत नोट किया है, यानी खवातीन की अरबी जो होती है ना वो फिर बहुत सुधरी हुई अरबी लगती है। ठीक है ना, तो लगता ही है कि उनका, या पता नहीं आजकल तो क्या हालात है, मैं काफी पहले की बात कर रहा हूँ, तो खवातीन ज्यादा बेहतर अरबी बोलती हैं। वो शायद ये इसी वजह से कि उनका जो है ना वास्ता दूसरे नेशनैलिटी से रिलेटिवली कम पड़ता है या पड़ता था कम, तो उनकी जो है ना ज्यादा प्योर अरबी जो है वो जो उन्होंने अपने बड़ों से सीखी थी, तो उसी के अंदर वो बात किया करती थी। बहरहाल कुरान करीम में मुतशाबहात ऐसे भी होते हैं कि एक जगह एक लफ्ज पहला पहले आया और दूसरा मकाम में दूसरा लफ्ज पहले आता है। इसकी वजह क्या है? नहीं, उसकी वजह जो है किरातों का फर्क तो थोड़ी है, वो तो हम जो कुरान मजीद पढ़े होते हैं ना वो तो एक ही किरात के ऊपर है, तो उसमें जो वजूहात हैं वो तो भाई अल्लाह ताला ने इस तरीके से नाजिल किया है। अब उसकी जो है वो फिर आप तफसीर के अंदर उसकी वजूहात आपको ज्यादा ज्यादा मिल सकती हैं, मुख्तलिफ किस्म की तफासीर के अंदर इस तरह के पॉइंट्स भी डिस्कस किए गए हैं। लेकिन ये बिल्कुल हम एक अलग टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ये इसका उससे ताल्लुक नहीं है जो कि आप कह रहे हैं या जो आप पूछ रहे हैं। ठीक है, बहरहाल 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं, तो बस ये पैराग्राफ या एक पैराग्राफ और रह गया है, इसको जल्दी से पढ़ के खत्म कर देते हैं आज की क्लास। कहते हैं कि शुरू में चूंकि लोग कुरान करीम के असलूब से के पूरी तरह से आदी नहीं थे, इसलिए उन 7 अकसाम के दायरे में बहुत सी क़िरातों की इजाज़त दे दी गई थी। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि हर साल रमजान में जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ कुरान करीम को दौर किया करते थे। जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई उस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा दौर फरमाया, यानी पूरा कुरान सुनाया। इस दौर को अर्ज़े अखीरा कहते हैं, आखिरी दौर जो था उसको। इस मौके पर बहुत सी किरातें मनसूख कर दी गईं और सिर्फ वो किरातें बाकी रखी गईं जो आज तक तवातुर के साथ महफूज चली आती हैं, यानी इससे भी कई ज्यादा किरातें पहले मौजूद थी, उनको जो है वो मनसूख कर दिया गया था इस मौके पर, आखिरी दौर के मौके पर। दौर कहते हैं कि पूरा कुरान जो है ना वो सुनाना। हजरत उस्मान रजी ने तिलावत कुरान के मामले में गलत फहमी रफा करने के लिए अपने अहद खिलाफत में कुरान करीम के 7 नुस्खे तैयार कराए, और इन 7 नुस्खों में तमाम किरातों को इस तरह से जमा फरमाया कि कुरान करीम की आयतों पर नुक्ते और जेर जबर पेश नहीं डाले। ठीक है, यानी इंटेंशनली जो है ना वो ये जेर जबर पेश और नुक्ते वगैरह नहीं डाले, ताकि इन्हीं मस्कूरा किराअतों में से जिन किराअत के मुताबिक चाहें पढ़ सकें। इस तरह अक्सर किराअतें इस रस्म अलखत में सिमा गई, और जो किराअतें रस्म अलखत में ना सिमा सकें उनको महफूज रखने का तरीका आप रजी अल्लाह तआला अन्ह ने ये इख्तियार फरमाया कि एक नुस्खा आप रजी अल्लाह तआला अन्ह ने एक किराअत के मुताबिक लिखा और दूसरा दूसरी किराअत के मुताबिक। उम्मत ने इन नुस्खों में जमा शुदा किराअतों को याद रखने का इस कदर एहतमाम किया कि इल्मे किराअत एक मुस्तकिल इल्म बन गया, और सैकड़ों उलमा कुर्रा और हुफ्फाज ने इसकी हिफाजत में अपनी उम्रें खर्च कर दी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी खर्च किए चले जा रहे हैं। अल्लाह उन सबको हमारी तरफ से बेहतरीन जजाए। ठीक है, यहाँ पे हम आज की क्लास खत्म करते हैं, अगर कुछ इसमें से एक्सप्लेनेशन होगी भी तो अगली क्लास के अंदर इसको देख लेंगे। ठीक है, कोई सवाल? ठीक क्या लिखा उन्होंने, सो डिड इट हैड डिड इट हैव एनी लिंक विद मसहफ उस्मानी एंड अदर मसहफ्स दैट वर फिनिश्ड, व्हाट हैड लिंक. नहीं, खैर ये अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आप तो आपको जरा और क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह. ठीक है, आखिर दुआ अन अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.